सुपर बलिया प्रभु वेट कर रहे आपका अमृत के लिए, अमृत पान करने के लिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्दरानापरः। Hare Krishna. So we would like to welcome all the devotees for today's Srimad Bhagavatam session. I have been given the service by His Grace Rameshwar Kanai Prabhu to have some discussion on Srimad Bhagavatam, third canto, 18th chapter, 16th verse, right? I believe, or it is 18. 16th verse, right? Okay. So, yeah, I came to 18 because there is no purport on 16, 17, and 18. There is only one line. So
you know, can generally take more shloka.
We'll take three shloka because when there is no purport of Srila Prabhupada, then I always endeavor that we should go to that shloka which will have Prabhupada's purport. So
Prabhu, ab 19, 20 bhi kar sakte ho. You can go because we want something Prabhupada ka. Yeah.
Okay. So we will see Prabhuji how it goes. So we will recite the verse. तो प्रभु मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन कोई दोहराएगा या should I recite full श्लोका and
then you recite प्रभु you recite.
Fine. पुनर्गदाम स्वाम पुनर्गदाम स्वामादाय भ्रामयन्तम् अभिक्षणशः अभ्यद्धावहरि क्रुद्धः संरम संरम्भाद दष्ट दच्छम पुनर्गदम 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 सामादाय भ्रामयन्तम् अभिक्षणशः अभ्यधावहरि क्रुद्धः संरम्भाद्दष्ट दच्छदम् पुनर्गदाम् सामादाय भ्रामयन्तम् अभिक्षणशः अभ्यधावहरि क्रुद्धः संरम्भाद्दष्ट दच्छदम् सिनोनियम्स् पुनः अगेन गदाम मेस स्वाम हिज आदाय हैविंग टेकन ब्राह्मयंतम ब्रैंडिशिंग अभिक्षणाशह रिपीटेडली अभ्यधावत रश टू मीट हरि द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड क्रुद्धः एंग्री समरंभात इन रेज दष्ट बिटन दच्छम हिज लीप. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The personality of Godhead now exhibited his anger and rushed to meet the demon who bit his lip in rage, took up his mace again and began to repeatedly brandish it about. Okay. So I request devotees to repeat the verse and then we'll go to the next verse because there is no purport here.
Time is so short.
Okay,
yeah.
Okay. I'll go to the next verse.
Yeah, Prabhu.
So the next verse we'll read only translation. So the translation is, then with his mace, the Lord struck the enemy on the right of his brow. But since the demon was expert in fighting, O gentle Vidura, he protected himself by a maneuver of his own mace. Verse number 18. In this way, the demon Hiranyaksha and the Lord, the personality of Godhead, struck each other with their huge maces, each enraged and seeking his own victory. So it's very wonderful verse. And the purport by Srila Prabhupada just says that Hiranyaksha is another name of Hiranyaksha, the demon. So that's the only purport here. Let's see if we have, okay. The other verse is also, there was a keen rivalry between the two combatants. Both had sustained injuries on their bodies from the blows of each other's pointed maces, and each grew more and more enraged at the smell of blood on his person. In their eagerness to win, they performed maneuvers of various kinds, and their contest looked like an encounter between two forceful bulls for the sake of a cow. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Here, the earth planet is called Ila. The earth was formerly known as Ilavrat Varsh, and when Maharaj Parikshit ruled the earth, it was called Bharat Varsh. Actually, Bharat Varsh is the name for the entire planet, but gradually Bharat Varsh has come to mean India. As India has recently been divided into Pakistan and Hindustan, similarly the earth was formerly called Ilavrat Varsh, but gradually as the time passed, it was divided by national boundaries. Jai Srila Prabhupada ki jai.
Jai. So,
obviously, if you see this translation which says that there was keen rivalry between two combatants, both had sustained injuries on their bodies from the blows of each other's pointed maces, and each grew more and more enraged at the smell of blood on his person. तो अभी अगर आप देखेंगे इसको, क्योंकि मुझे हिंदी में कहने के लिए कहा गया है, तो ऐसा लगेगा कि कोई जो फिल्म होती है, मूवी होती है, उसमें जब लास्ट सीन होता है क्लाइमेक्स का, तो क्लाइमेक्स में इस तरह की लड़ाई होती है. पर्टिकुलरली जो एक्शन मूवीज होती है, तो हम सब लोग जो है वो मूवी देखने के बहुत आदि है, बहुत टाइम से, यू नो. और पर्टिकुलरली कृष्ण भावनामृत में आने के पहले कई भक्तों ने बहुत सारी मूवी देखी है, और बाहर वाले लोग तो देखते ही रहते हैं. तो जो कुछ भी इस संसार में होता है, उसका जो सोर्स है, हाँ, वह एक ही है, और वह है श्रीमद् भागवतम. सब कुछ श्रीमद् भागवतम से आता है. आप जो भी कुछ देख लो, तो इन देयर ईगरनेस टू विन दे परफॉर्म मैन्यूवर्स ऑफ वेरियस काइंड्स. तो ये जो हमारे थलाइवा इधर उधर जो जंप मारते हैं, और जो कुछ भी मैन्यूवरिंग होता है उनका, इट ऑल कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. इट्स वेरी सिंपल. हाँ, इंद्रिय. सो क्या होता है कि एते चाम्स कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम हिम ओनली. वॉट एवर वी सी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वॉट एवर एमिनेट नॉन एमिनेट, जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ भगवान से ही आता है. हाँ, तो भगवान सबके श्रोत्र है, ये हमको समझना चाहिए, और भागवत में सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे बताते हैं कि किसी को समझो, अगर मूवी की बात करते हैं तो मूवी किस प्रकार, कितने कितने प्रकार की होती है, लेट मी जस्ट क्लोज द दिस थिंग। जो अच्छा मैं ना इसको इंटरेक्टिव रखूंगा, तो चाहूंगा कि आप भी इसको जवाब दीजिए। तो हम कैटेगरी देखते हैं, मूवी की कैटेगरी कैसे होती है, जस्ट टेल मी वन एनी कैटेगरी ऑफ द मूवीज विच यू नो आप लोग।
हॉरर मूवी,
हॉरर मूवी, ओके वेरी नाइस।
इट कैन बी फिक्शन,
या इट कैन बी फिक्शन, एक्शन, हॉरर, रोमांस, कॉमेडी, कॉमेडी,
इमोशन,
ये सब, और
इमोशनल,
इमोशनल, यस। तो ये सब कुछ है ना हमारे भागवत में विद्यमान है और हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। आपको एकदम इमोशनल मूवी देखनी है, रामायण देखिए। रामायण से ज्यादा इमोशंस कुछ नहीं हो सकता है। इंडियन रामायण में इतनी इमोशंस है, इट्स फुल ऑफ इमोशंस एक्चुअली, कंप्लीट रामायण। रोमांस देखना है, भागवत के अंदर रोमांस भी है। कॉमेडी देखना है, बहुत सारी कॉमेडी यू नो भागवत के अंदर आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर भगवान जो है वो इस प्रकार से क्रिया करते हैं कि भक्तों का मन जो है वो गदगद हो जावे, है कि नहीं। हॉरर देखना है, फिफ्थ कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम पढ़िए, उससे बड़ा हॉरर कहीं नहीं, दैट इज देयर इन फिफ्थ कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम, वो उसमें मिल जाएगा। एक्शन चाहिए, सेवेंथ कैंटो डेडिकेटेड टू नरसिम्हदेव भगवान, उसको देखिए, या वराह देव और हिरण्याक्ष की लड़ाई देख लीजिए। एक्चुअली द टॉपिक ऑफ अवर अवर डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये चैप्टर जो है वो यही है, बैटल बिटवीन लॉर्ड वराह देव एंड हिरण्याक्ष, दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई हो रही है। और ये जो लड़ाई है ये किसी साधारण व्यक्ति के बीच में नहीं है। अभी क्या होता है कि फिल्मों में बताते हैं, फिल्मों में तो सब फिक्शन होता है, मतलब कोई रियल लड़ाई नहीं होती है, लेकिन इफेक्ट्स देके सब बताते हैं। लेकिन फिर भी किस तरह से हीरो अपना शर्ट फाड़ रहा है, यू नो उसके बाइसेप्स से शर्ट फट जाते हैं, और कैसे गाड़ियां उल्टी पुल्टी होती है, वो सब होता है। लेकिन यहाँ पे हकीकत में यू नो हम देख सकते हैं तो, और जो भगवान जिस प्रकार से अपना क्रोध बताते हैं, इस वर्ष में भी क्रोध के बारे में लिखा है, दैट नाउ लॉर्ड इज बिकमिंग एंग्री। अब तक भगवान खेल रहे हैं हिरण्याक्ष के साथ में, लेकिन अभी भगवान को क्रोध आ जाता है। तो भगवान का क्रोध जो है वो ऐसा ऑर्डिनरी क्रोध नहीं है कि जैसे हम लोग क्रोध करते हैं। भगवान का जो क्रोध था जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उस क्रोध को कोई शांत करने के लिए ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा महेश और लक्ष्मी वो भी पर्याप्त नहीं थे। तब फिर प्रहलाद को आगे भेजा गया कि भाई आप जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने कहा भी लक्ष्मी को कि भाई ये तुम्हारे पति है, और जब पति क्रोधित होता है तो पत्नी का कर्तव्य है उसको शांत करावे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा रौद्र रूप मैंने कभी नहीं देखा अपने पति का, मुझे डर लग रहा है। तो बहुत यू नो भगवान जो है, तो एनीवे तो ये जो ये इस घटना पे हम लोग आते हैं, तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसकी बताना चाहूंगा, बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड शुरुआत होती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि वो सुखदेव अपने विदुर जी मैत्रेय मुनि से अनेकानेक कथा सुनने के बाद, पुण्य कथा सुनने के बाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं मुझे और बताइए, मुझे और सुनना है। तो वे कहते हैं कि निशम्य वाचम वदतो मुने पुण्य तमाम रिपह भूय प्रपच्छ कौरव्य वासुदेव कथा द्रुतः, कि वासुदेव की और कथा सुनाइए मुझे, मुझे और सुनना है। और ये ना भागवत के अंदर एक कंटिन्यूस थ्रेड है कि जिसमें भक्त जो है वो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी व्हाट विल यू गेट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, व्हाट वाज आंसर ऑफ प्रभुपाद, एनीबॉडी? प्रभुपाद ने कहा मोर चैंटिंग, चैंटिंग का रिजल्ट क्या है, मोर चैंटिंग। चैंटिंग से हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम ज्यादा जप कर सके इसलिए जप करते ताकि हम और जप कर सके, और जप करके क्या मिलेगा, और जप करेंगे, और जप करके क्या मिलेगा, और जप करेंगे, और जप करेंगे, बस यही है। तो जो भक्त होता है वो सुनना चाहता है, और ये कंटिन्यूस श्रेड भागवत के अंदर हर जगह पे। इवन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं दसम स्कंद में, उपगीय माना भवोषदाशोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विराजेत बिना पशुघ्नात। वो कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि, आप मुझे डिटेल में सुनाइए, शॉर्टकट मत मारिए। आप ये मत सोचिए कि बेचारा राजा भूखा प्यासा बैठा है, 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि जब दसम स्कंद पर पहुंचे तब तक लगभग 3.5 दिन हो गया था। तो बोले 3 दिन से कुछ राजा ने खाया नहीं है, मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है। तत् अच्युत पीयूषम, कि आपके जो मुखार विंद से ये जो भागवत की सरिता का प्रवाह हो रहा है और ये झरझर झरझर आपके मुंह से बह रही है, वो मेरे कर्ण वृंद्रों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रविष्ट होके और मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर रही है। ना मुझे भूख लगी है, ना मुझे प्यास लगी है, ना मुझे नींद आ रही है। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है लोगों का और भक्तों का भी कभी कभी, कि भूख प्यास, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में बैठे रहते हैं, कभी कभी प्रसाद के बारे में सोचते हैं कि कभी लेक्चर प्रभु जी खत्म करेंगे और प्रसाद मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज जो हम ये यू नो ऑनलाइन संघ में जो मिस कर रहे हैं वो है प्रसादम। बाकी सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन तो कई बार प्रसाद के लिए, और फिर क्या होता है कि कई बार नींद आ जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इसलिए हमारे सार्वभौम प्रभु जी कई बार मजाक मजाक में बोलते हैं कि हमारे इस्कॉन में 2 मंत्र बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक मंत्र वो है जिसको कहते हैं सुषुप्त मंत्र, जिसको पढ़ने से नींद आती है, और दूसरा है जिसको बोलते हैं जागृत मंत्र, मतलब जिसको पढ़ने से आदमी उठ जाता है। तो वो कौन कौन से मंत्र है? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सुषुप्त मंत्र है, क्योंकि जैसे ही भागवत क्लास शुरू हो जाती है कई भक्त लोग सो जाते हैं भागवत के अंदर। इसीलिए ना बताते कि हमें श्रोता होना चाहिए, सोता नहीं। नहीं तो श्रोता गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोता, और वो सो जाता है। और ये परंपरा है ना भागवत की, है कोई बताना चाहेगा कहां से शुरुआत हुई इसकी?
पार्वती माता
भी सो गई थी जब शिव जी भागवत सुना रहे थे, तो पार्वती माता सो गई और शुक जो बैठे थे ऊपर वृक्ष पे वह हुकार दे रहे थे। तो शिव जी कंटिन्यू किए, फिर आप सबको कथा तो ज्ञात है, तो मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। और फिर सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से प्रकट हुए। तो पार्वती मैया जो है, तो कई बार ऐसा होता है कि हरि कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रुचि लेके सुनना चाहिए हरि कथा। बहुत एक्चुअली ये जो हरि कथा है ना, ऐसे बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि भागवत पढ़ने के बाद हमको भक्ति प्राप्त होगी, भागवत पढ़ना ही भक्ति है, भागवत सुनना ही भक्ति है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कभी कभी भागवत में श्रुति फल दिया है, जैसे इस कथा के बाद भी सुखदेव गोस्वामी श्रुति फल देते हैं, कहते हैं कि जो इस हिरण्याक्ष की कथा, मतलब वरादेव और हिरण्याक्ष के इस लड़ाई की कथा सुनेगा उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, ऐसा श्रुति फल है। लेकिन भागवत सुनना ही अपने आप में भक्ति करना है, वो अलग नहीं है, तो सुनना चाहिए। तो कई बार एक्चुअली ऐसे बताते हैं जैसे शिव जी जब ये कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, लेकिन उसके पहले वो कथा सुनने के लिए भी गए थे। तो हमको दोनों चीज करना चाहिए, कथा सुनना भी चाहिए और कथा करना भी चाहिए, जैसा हमारी क्षमता और योग्यता में हो। और मैत्रेय मुनि एक्चुअली इसी कैंटो में, 3rd कैंटो में ही ये बात विदुर से कहते हैं, तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिम स्वम सत हरि कर्तुम गिरा अन्याभिदासिते। वो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ माय इनएबिलिटी, व्हाट एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड व्हाट एवर आई कुड एसिमुलेट, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू ओ विदुरा बाय ऑनेस्ट एंडेवर, अनलेस अदरवाइज माई स्पीच विल बिकम अनचेस्ट। मतलब वो कहते हैं कि हे विदुर जी, आप मुझसे अनेकानेक प्रश्न कर रहे हो, लेकिन इन सब प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता मुझ में नहीं है, तथापि फिर भी, लेकिन अपितु वापिस कीर्तयामी अंग, अंग मतलब विदुर जी का नाम है, विदुर जी को संबोधित किया है, तथापि कीर्तयामी अंग यथामति यथाश्रुतम, जितना मुझे समझ में आया है और जितना मुझे याद रहता है। तो कई बार ऐसा भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमको कुछ याद ही नहीं रहता, श्लोक कभी हम याद ही नहीं रख पाते हैं, या कुछ नहीं हम ना? तो सुनो, जितना याद रहेगा उतना दूसरों को बताने की कोशिश करनी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, कि अमार आज्ञा गुरु है तारो ए देश जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और भारत भूमि ते जन्म होइले मनुष्य जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो हमको एक दूसरे को बताना चाहिए वही भक्त का गुण है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चरमंती च। तो भक्त जो होता है वो भक्त में सुनने में बड़ा आनंद लेता है पहले। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अच्छी तरह से सुनेगा वो फिर अच्छी तरह बता भी पाएगा, लेकिन श्रवण बहुत जरूरी है। तो हमारे भक्ति के 9 अंगों में सबसे मुख्य अंग जो है वो है श्रवण। और ये श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे समझो हम लोग जब सो भी जाते हैं तो ऐसे बताते हैं कि हमारा पूरा शरीर लगभग मृत अवस्था में चला जाता है, लेकिन केवल एक इंद्रिय है जो कार्य करती है। और वो कौन सी इंद्रिय है? वो है हमारे कर्ण। कान हमारे खुले रहते हैं इसलिए अलार्म लगाते हैं हम लोग, है ना। हम लोग ऐसा कोई लकड़ी नहीं लगाते ऊपर के ठप करके लकड़ी सिर पे मारेगी और हम उठेंगे, नहीं, अलार्म लगाते, अलार्म सुन के और फिर हम उठ जाते हैं। और कई बार तो हम ऐसे बद्ध अवस्था में कि जब अलार्म बजता भी है तो हाथ पैर मार के उसको बंद कर देते हैं जैसे तैसे, और कहते हैं कि चुप नालायक गलत टाइम पर बज रहा है ये क्या। और फिर हम एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी वो दिन आएगा जब हमें भगवान की बांसुरी सुनाई दे, कब कृष्ण के वेणु वादन में सुन पाऊंगा। तो पहले हमको अलार्म की घंटी सुननी पड़ती है, और वो जब मीठी लगनी लगे तब हम कभी सोच सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमको भगवान का वेणु वादन सुनाई दे। लेकिन जब तक अलार्म पसंद नहीं आएगा तो वेणु वादन तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए। तो ये श्रवण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वे कहते हैं कि मुझे सुनाइए। और एनीवे मैं कह रहा था कि वो सुषुप्त मंत्र है, सो जाते हैं भक्त लोग कई बार श्रोता, और महाप्रसादे गोविंदे कहने पे उड़ जाते हैं। एनीवे तो बहुत ही आदर से वो कहते हैं कि मुझे और बताइए भगवान के बारे में, मैं और सुनना चाहता हूँ, मुझे प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। तो जब श्रोतागण सुनने के लिए आतुर रहते हैं तो वक्ता भी जो होता है वो बहुत ही उत्साह में आ जाता है। और कई बार सुखदेव गोस्वामी भी, समझो सुखदेव गोस्वामी तो विरक्त चूड़ामणि है, वो एक अलग लेवल पे, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच बीच में वो टेस्ट करते थे परीक्षित का और जानना चाहते थे कि भाई वो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने एक बार बीच में परीक्षित को ऐसा कहा कि अघासुर का वध हुआ और ब्रजवासियों को 1 साल के बाद पता चला और वो आगे बढ़ गए। तो जैसे वो आगे बढ़ रहे थे परीक्षित महाराज ने वहीं उनको रोका और कहा रुकिए रुकिए, आपने ये कौन सी बात कह ली कि अघासुर का वध हुआ और ब्रजवासियों को 1 साल के बाद पता चला, ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनको तुरंत पता नहीं चला, 1 साल में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, प्लीज मुझे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि वाह वेरी गुड परीक्षित, तो कितना ध्यान से सुन रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और तब क्या हुआ, तब सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया बताइए मुझे, आप सबको ज्ञात है ये बात, सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया? कमॉन कमॉन वेरी नाइस, ब्रह्म विमोहन लीला। तो अगर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न ना पूछते तो हमको शायद ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में पता नहीं चलता, इतना महत्वपूर्ण एपिसोड। और यहाँ पर एक्चुअली ब्रह्मा जी से ही हो रहा है सब कुछ, ये वरादेव का प्राकट्य कैसे, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए इस लड़ाई का, तो बैकग्राउंड वो है कि 13वें अध्याय में भगवान वराह का प्राकट्य है, उसकी लीला के बारे में आता है। और वहीं से ये कथा शुरू होती है कि विदुर जी पूछते हैं कि प्लीज मुझे बताइए, मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू मनु अपनी पत्नी को पाने के बाद उन्होंने क्या किया। हाँ, तो बेसिकली घटना ऐसी है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, 4 कुमार उत्पन्न होते हैं, वो कहते हैं कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, 4 कुमार कहते हैं ऐसी झंझटवारे में हमको नहीं पड़ना है, हम क्या, हम ब्रह्मचारी हैं और हम ऐसे ही ब्रह्मवादी ऐसे ही रहने चाहते हैं, हमको ये प्रोडक्शन में नहीं लगना है क्योंकि बहुत उसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत कठिनाई होती है, तो हमको वो कार्य नहीं करना है। और ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए लेकिन कुछ कर नहीं सके। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मुनु और शत्रुपा उनको प्रकट किया और फिर उनको कहा कि आप जाके मैथुनी सृष्टि का जो है वो आरंभ करो। हाँ, तो ये घटना यहाँ पर उन्होंने बताई। और प्रश्न किया विदुर जी ने कि स्वयंभू मुनु और उनकी पत्नी उन्होंने आगे क्या किया, तो आप मुझे बताइए। और वो कहने लगे कि मैं जानता हूं कि जो मनु है स्वयं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है वो भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके चरित्र और उनके काले कराप के बारे में सुनना चाहता हूँ, तो वी वुड लाइक टू हियर अबाउट एन एडवांस डिवोटी, कौन है, उन्होंने क्या किया। तो भागवत भी देखो दो प्रकार के होते हैं, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। बोले दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत या पुस्तक भागवत और दूसरा होता है भक्त भागवत। तो अब दोनों भागवत है और कोई ऐसा प्रश्न उठाए कि इन दोनों भागवत में से कौन बड़ा है, तो क्या उत्तर है, कोई बोलिए।
भागवत का रस, भागवतम का रस भाव अच्छा है प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो, औरों का पता नहीं मुझे, मेरी समझ में तो कुछ ऐसा ही
है।
भक्त भागवत बड़ा बिकॉज ही कैन पुल आवर ईयर्स,
वेरी गुड।
ग्रंथ भागवत वो भक्त से पढ़ेगा तो भक्त भागवत,
चलो वेरी नाइस, सो यू ऑल नो दिस आंसर, वेरी नाइस, भक्त भागवत बड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली यू नो भक्त भागवत हमारा कान खींच सकता है, ग्रंथ भागवत कान नहीं खींच सकता। ग्रंथ भागवत को किधर उठा के रख दोगे, कभी वर्शिप करोगे, कभी पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, तो ग्रंथ भागवत बेचारा कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन भक्त भागवत जो है वो आपको कहेगा कि आप यू नो ऐसा क्यों कर रहे हो। एनीवे, सो इसके लिए वो कहते हैं कि मैं चरित्र सुनना चाहता हूँ भक्तों का, बड़े भक्तों का, मुझे उसके बारे में बताइए। और वे कहते हैं कि जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक और दीर्घ काल से अपने गुरु को सुनते हैं, उनके भीतर भगवान के चरण कमल जो है वो प्रकट हो जाते हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इस प्रकार से कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं कि विदुर जो थे वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, वो भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखते थे और वे बड़े प्रसन्न थे। तो आप सब जानते हैं, मैं खाली स्मरण करवाता हूँ कि विदुर जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, ऐसे बताते हैं कि एक तरह से जो महाभारत इनों के हीरो जो है वो तो कृष्ण है डेफिनेटली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक जो ये जो पात्र है ना कैरेक्टर विदुर जी है, जो कि बहुत बहुत ही उच्च स्तर के भक्त है महाभारत के अंदर। तो नहीं, वे उन्होंने फिर बोलने का प्रयास किया, वो कहते हैं कि जब मनु प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, आप जो है सबके जीविका के स्रोत हो और कृपया करके मुझे आदेश दो कि मैं आपके लिए क्या करूं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पुत्र जो होता है उसको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, और क्योंकि क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए एक्चुअली जब मनु ने ऐसा पूछा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, प्लीज टेल मी माई फादर, बिकॉज उनके पहले पुत्र जो थे चार कुमार वो मना कर चुके थे, तो उनको बड़ा क्रोध था, तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि आप जो हो बहुत ही सर्वथा उपयुक्त यू नो पुत्र हो और आपका जो कार्य है वह भी बहुत अच्छा है, और क्योंकि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि आप जो है वो सृष्टि का निर्माण करो और जाओ। तो वे जाते हैं, तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि धरा पृथ्वी जो है वो अपने ऑर्बिट में नहीं है, पृथ्वी जो है वो समुद्र गर्भोदक सागर के अंदर उसके गर्त में चली गई है। अभी कहीं कहीं पे ये वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष ने उठा के वो पृथ्वी को जो है वो गर्भोदक सागर में डाल दी थी, कहीं कहीं वर्णन आता है कि पृथ्वी अपने आप चली गई, जो भी है पर पृथ्वी उसमें थी। तो वे गए और वापिस आए और कहे कि हे पिता, पृथ्वी जो है वो तो अपने जगह पे नहीं है, तो हमको स्थान चाहिए, बिना स्थान के हम लोग कैसे किसी चीज का सृष्टि करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि जैसे हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्थान, कि जैसे अभी हम लोग क्या हो रहा है कि अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो जूम प्लेटफॉर्म हमारा स्थान हो गया, लेकिन अभी सून नो जैसे हमारे कल से हमारे यहाँ पे अवतारी देश में भी वापिस फिजिकल प्रोग्राम शुरू हो रहा है,
ऑफलाइन
फिजिकल प्रोग्राम में हमको एक स्थान, तो अभी स्थान ढूंढने के लिए बड़े हमको पापड़ बेलने पड़े, कौन से हॉल में करेंगे, किधर करेंगे, क्या रेंट है। तो स्थान का अपना एक महत्व है, इसलिए श्रीमद् भागवत में जो 10 विषय वस्तु है उसमें स्थान एक महत्वपूर्ण यू नो इंग्रेडिएंट है। सो इसलिए सुखदेव क्या गोस्वामी कहते हैं कि अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मनमंत्रे ईशानो कथा मुक्ति निरोध आश्रय। ये श्रीमद् भागवतम के 10 सब्जेक्ट मैटर है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम, तो स्थान जो है वो था नहीं, तो वापिस आए पिता को कहा कि पिता स्थान तो नहीं है ना? आपने हमें तो क्या करे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, तो वो जब सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक विचार कर रहे थे, तो उनके विचार करने से क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के नासिका में से एक वराह के आकार का एक छोटा सा दाना प्रकट हुआ। हाँ, और जैसे ही प्रकट हुआ वो धीरे 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 बड़ा होता गया और देखते देखते एक हाथी का रूप ले लिया। तो रूप जो था, आकार जो है मतलब साइज जो है वो हाथी का ले लिया, तो आकार जो है वराह का था, शुकर का था, लेकिन साइज जो है वो हाथी का बन गया इतना बड़ा। तो ब्रह्मा जी बड़े यू नो बेसिकली बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है जो मेरी नासिका से यू नो प्रकट हुआ है और ये है कौन। तो जब वो सोच रहे थे और सारे मरीचि ब्रह्मा यू नो विचार विमर्श कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत जोर से अट्टहास किया वराहदेव ने। तो उस आवाज को सुन के ब्रह्मा जी को समझ गया कि ये तो विष्णु ही है, ये भगवान है और ये हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो इतने ही सागर की गर्त में चली गई, उसको बाहर निकालेगा कौन। तो वो निकालने के लिए भगवान जो है वो स्वयं आए हैं, वो प्रकट होंगे। तो ब्रह्मा जी सोचने पे ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आ गई, और जैसे ही उनको ये जब पता चला यू नो कि ये है, तो जो ध्वनि हुई उस ध्वनि से क्या हुआ, जनलोक तपलोक सत्यलोक सारे के सारे महर्षि वे भगवान की स्तुति करने लगे उस कोलाहल को सुन के, उस वाणी को सुन के। क्योंकि क्या होता है कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं ना, भगवान को एक उत्तम श्लोक के नाम से भी कहा जाता है, तो बड़ी अच्छी अच्छी स्तुतियां जो है वो भगवान के लिए प्रकट होती है। हा? और पुरुष सूक्तम और इस प्रकार से, तो वे वेद जो है वो स्तुति करने लगे। और बहुत सारी स्तुतियों का वर्णन है, अगर आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां उसकी होती है। लेकिन भगवान क्या स्तुति सुनते ही उन्होंने क्या किया, वो आए थे किसके लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जो भी अवतार होता है वो एक पर्पस के लिए होता है ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान आए, वो जल में प्रवेश किए और अपनी पूंछ को फटकारते हुए जैसे शुकर जनरली करता है, वो आकाश में उड़े और जप करके उस समुद्र के अंदर उन्होंने छलांग लगाई। तो जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई और अपनी पूंछ से उसको फटकारा, ऐसा मानो प्रतीत हुआ कि समुद्र दो भागों में डिवाइड हो गया। हाँ, क्योंकि वो ढूंढना चाहते थे और वो समुद्र की गर्त में था। और ऐसे बताते कि समुद्र की गर्त जो है ना बहुत ऐसे फिल्दी होता है, तो केवल शुकर जो होता है वो उसको ढूंढ सकता है, क्योंकि वो नाक से सूंघता है। तो तुरंत वो एकदम शुकर होने के लिए वो अंदर गए। अभी एक चीज जो समझने के लायक ये है कि भगवान जब किसी रूप को धारण करते हैं तो वे उस प्रकार से नहीं बन जाते हैं, वे हमेशा दिव्य रहते हैं। इसलिए साक्षात भगवान प्रभु जो विष्णु है, हाँ वे दिव्य थे, लेकिन शुकर होने की वजह से पृथ्वी को अपने गंध से उन्होंने ढूंढ निकाला और ढूंढ के और वे पृथ्वी को ऊपर लाने लगे। तो उस चैप्टर में तो खाली इतना ही वर्णन आता है कि भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को उठाया, अपने टस्क पे रखा, बाहर लेके आए, और वो जब इस प्रकार से कर रहे थे तो एक दानव उनके पीछे उनका पीछा कर रहा था, उनको मारने के लिए जा रहा था, और वो दानव उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंचा, लेकिन भगवान ने क्या किया, वो भगवान वहां से निकल लिए। बस इतना ही है और वो स्टॉप हो जाता है। फिर ऑब्वियसली आगे और कथा सुनने के लिए विदुर जी पूछते हैं कि फिर क्या हुआ, तो फिर बाद में उसका पूरा बैकग्राउंड आता है। तो ये पूरा भागवतम जो है ये पूरा बैकग्राउंड के अंदर ही है। तो वो बैकग्राउंड है कि जिसमें संध्या के समय दिति जो है वो गलत गर्भ धारण करती है। ऑब्वियसली आपको कथा पता है, आपने सब पढ़ा भी है अभी रिसेंटली, तो मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं स्मरण करवा रहा हूँ कि संध्या समय में दिति का गर्भ धारण होता है और उसकी वजह से क्या होता है। कश्यप मुनि कहते हैं कि क्योंकि गलत समय पे गलत कार्य किया है तो इसके लिए तुम्हारे गर्भ से दो राक्षस पैदा होंगे, दानव पैदा होंगे, और उसका वर्णन आता है। और वो दो दानव कौन है उसका बैकग्राउंड आता है कि किस प्रकार से एक बार चार कुमार जो है वह गए वैकुंठ में और वहां पे दो द्वारपाल जो है जय विजय वो उन्होंने रोक लिया। ओके, और उसके पहले इंद्र के ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा है, लेकिन वैकुंठ के बारे में करते हैं तो वैकुंठ में एक्चुअली कोई ऐसे पहुंच नहीं सकता। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि नोबडी कैन गो टू वृंदावन जस्ट बाय परचेसिंग ए टिकट, खाली कोई टिकट लेके वृंदावन में नहीं पहुंच सकता। वृंदावन में जाने के लिए वृंदावन का कॉन्शियसनेस चाहिए हमारे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो हम खाली टिकट खरीदेंगे और वृंदावन में घुस जाएंगे, तो कोई वृंदावन में ऐसे ही नहीं जा सकता। तो इसके लिए वृंदावन का वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो गोलोक वृंदावन के अंदर भी हम ऐसे नहीं जा सकते, गोलोक वृंदावन में गोलोक वृंदावन का कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ओके, और एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि ये गोलोक वृंदावन का नाम है गो लोक, मतलब ये गायों का लोक है, गोपाल का लोक है। तो जब तक हम गायों की सेवा करना नहीं सीखेंगे, मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज एक बहुत भगवान की असीम कृपा से, भक्तों के सहयोग से आज हमने एक बहुत बड़े प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक मित्र था जो वृंदावन में लॉकडाउन के पीरियड में रहा और उसने देखा कि बहुत सारी गाय आवारा घूम रही है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उनको चारा वगैरह खिलाते थे लेकिन समहा उतना पर्याप्त नहीं था। तो उनके लिए एक शेल्टर आवास बनाने का हमने विचार किया, प्रण लिया, और ये बहुत ही कठिन कार्य था लेकिन समहा और तर भगवान की कृपा से वो कार्य संपूर्ण हुआ। और हमने आज नहीं यस्टरडे वी हैव ब्रॉट टू काउज इन अवर वृंदावन में एक छोटी सी जगह में एक व्रज धेनु फाउंडेशन के नाम से एक शेल्टर बनाया है, काउ शेल्टर, वहां पे दो गायें लाए हैं। और ब्रज धेनु फाउंडेशन उसमें दो गायें लाके आज, मतलब हमारा ये सपना जो था पिछले एक साल का वो आज पूर्ण हुआ। तो इसलिए मैं
जय हो मुबारक,
इसलिए मैं आप सब लोग थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये आसान नहीं है लेकिन गायों की सेवा करनी पड़ेगी। तो अगर जैसे एक बार मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि परम पूज्य राधानाथ महाराज गौरांग प्रभु और राधेश्याम प्रभु को बोले कि गाय का दूध निकालना आता है क्या तुमको, इतना बड़ा आईआईटी किया है इतना तो बोले नहीं आता महाराज। तो बोला नहीं आते तो गोलोक में क्या करोगे? तो गोलोक में जाना है तो गायों की सेवा। तो नहीं, ऐसे तात्पर्य मैं ये बताना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति वृंदावन में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार से वैकुंठ में ऐसे ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वैकुंठ जो है वो बहुत बड़े पुण्य से मिलता है, पुण्य भी बहुत छोटी चीज है उसके लिए, मतलब पूरी भक्ति हो तब जाके आप वैकुंठ में घुस सकते हो। लेकिन चार कुमार वैकुंठ जा रहे थे और जो जय विजय थे वो उनको पहचान नहीं पाए। तो कई बार क्या होता है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, हमको समझ में नहीं आता, सोचे चार छोटे से नंगे पुंगे बालक है, 5 वर्ष के थे वो, ये कौन आ गए अंदर घुसने के लिए करके ना, वो पहचान नहीं पाए उनको, तो उनको रोका उन्होंने। तो चार कुमारों ने उनको श्राप दे दिया और जैसे ही श्राप दिया भगवान नारायण विष्णु वो बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आप आइए, क्या हो गया? और ये मेरे भृत्य, इन्होंने अगर कुछ उद्दंडता की है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और प्लीज इसको माफ कर दीजिए, और आप चाहो तो मैं अपना हाथ काट के भी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मिस्टेक ऑफ ए सर्वेंट इज एक्चुअली मिस्टेक ऑफ द मास्टर। तो ऐसा वो कहते हैं, तो फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी हमने इनको श्राप तो दे दिया है, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम मर्त्य लोक में चले जाओ, इस पृथ्वी पर आ जाओ। फिर उस श्राप को थोड़ा छोटा करते हैं और वो कहते हैं कि यू हैव ऑप्शन, आइदर यू टेक 3 बर्थ ऑफ डीमन एंड कम बैक इन वैकुंठा अगेन, और यू टेक 7 बर्थ ऑफ ए डिवोटी, यू चूज। ऑप्शंस दिया था। तो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी कैनॉट स्टे अवे, सेपरेट विरह जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और हमारा पूरा जो भक्ति है वो विरह के प्रिंसिपल पे ही एक्चुअली चलती है। तो उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू कम बैक। तो सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये तीन उन्होंने रूप लिए और फिर वापिस से, एक्चुअली ऐसे बताते कि तीन रूप लेने के बाद भी वो वैकुंठ जा नहीं पाए, क्योंकि उनको एक और रूप लेना था कलयुग के अंदर। तो वे जगाई और मधाई के रूप में वापिस से प्रकट हुए और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वे वापिस से फिर जा सके। तो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु जो है वो बहुत कृपालु, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, अभी जस्ट हमारा नित्यानंद त्रयोदशी गया है और गौर पूर्णिमा आ रही है, तो वी आर एग्जैक्टली इन बिटवीन। तो आई वुड लाइक टू इवन टच अपॉन दिस दैट भगवान श्री कृष्ण जो है ना, इज अ वेरी डिमांडिंग गॉड। वो कहते हैं क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, अहम काम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच, तुम डरो मत। लेकिन क्या करना पड़ेगा, पहले पहले तुमको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तुमको वो छोड़ के भगवान, यू नो कृष्णा इज अ वेरी डिफरेंट गॉड एक्चुअली, तो वो डिमांड करते हैं कि तुम मेरे पास आओ, सब कुछ त्याग के मेरे पास आओ। अभी त्याग करना बहुत मुश्किल है हमारे जीवन के अंदर, त्याग जो है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के पास गया और कहा कि हे साधु महात्मा, आप कितने बड़े त्यागी हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो साधु महात्मा ने कहा कि अरे मैं कहाँ त्यागी हूँ, आप महात्यागी हो। तो उसने कहा अरे अरे नहीं, मजाक मत कीजिए। जैसे कभी कभी होता है ना, वो दो भक्त लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो बोलते हैं अरे प्रभु जी आप कितने महान हो, तो बोलते, तो कई बार ऐसा होता है कि भले मन ऐसा ऊपर से हम लोग बोलते हैं कि नहीं 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 प्रभु जी ना, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, आई एम लोअर देन जगह इन मदाई, आई एम ए लोअर देन द वर्म इन द स्टूल, इस तरह से बहुत बोलने को लोग बोल देते हैं। लेकिन मन ही मन अंदर सोचते रहते हैं कि यार क्या, मेरी तारीफ करना भी इसको नहीं आता। अरे अनंत शेष अगर अपने हजार फणों से मेरी तारीफ करेगा तो भी कम पड़ेगी, ऐसा मन में सोचते हैं कई कई लोग। तो एनीवे, तो सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ
तो साधु साधु संत,
हाँ
he went to meet someone, a devotee went to meet a sadhu.
तो उन्होंने कहा नहीं मैं त्यागी नहीं, आप महात्याग बोला रहे साधु महात्मा, आप क्या मजाक कर रहे हैं, आपने तो देखो कितना बड़ा त्याग किया है, मैं तो क्या है, मैं तो अपने यू नो घर में लगा हुआ हूँ, मैं कहाँ से त्यागी हुआ, आप त्यागी हो। साधु ने कहता नहीं मैंने कहा आप महात्यागी हो। तो अरे साधु महात्मा आप मजाक मत कीजिए, देखो मेरा घर बार है, मैं नौकरी धंधा करता हूँ और बहुत कुछ, मेरा बहुत झमेला लगा होता है, मैं कहाँ से त्यागी हुआ। तो साधु फिर कहता नहीं आप महात्यागी हो, तो वो फिर झुंझला जाता है और कहता है कि अरे बार बार आप मुझे ऐसा कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, हाँ मैं तो आपको अच्छी तरह से त्यागी बोल रहा हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो महात्यागी कह के। तो साधु ने कहा नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैंने तो केवल क्या किया है कि अपने घर बार का त्याग किया है, हाँ कुछ नौकरी धंधा का त्याग किया होगा, बिजनेस का त्याग किया होगा, कपड़ों का, वस्त्रों का, खाना पीने, सोने, इन सब का त्याग किया हूँ, ये तो बड़ा तुच्छ त्याग है, लेकिन आपने तो कृष्ण का त्याग कर दिया, इसलिए आप महात्यागी हो। तो इसलिए आप महात्यागी हो। हाँ तो कई बार क्या है कि हम लोग त्याग नहीं कर सकते, भगवान कहते छोड़ो और मेरे पास आओ, सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ, तो हम लोग कहते नहीं 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 अभी भी हम लोग हमारा सब मेंटेन करके रखेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, एक नाव में एक पैर इधर एक नाव में उधर, हम लोग नहीं छोड़ सकते, तो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। तो भगवान डिमांड करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं, हमारे महाप्रभु बड़े ही औदार्य है, बड़े ही उदार है। वो क्या कहते हैं कि तुम कुछ छोड़ो मत, आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हाँ तो तुम वहीं पे रहो बट मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और इसीलिए है ना, बोलते ना कि पापी तापी जत चिलो हरिना में उतारी लो, हाँ कि वो भगवान के पास वो जाएंगे। तो कहते हैं कि सबसे बड़े दाता जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है, दाता शिरोमणि के स्थान स्थान यू नो कुछ देखते नहीं है कुछ, ना ही देखे स्थान स्थान यारे देखे कैला दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि, बहुत बड़े शिरोमणि दाता शिरोमणि दे देते हैं, कुछ मांगते नहीं, कुछ डिमांड नहीं करते हैं कि बस तुमको जो चाहिए मैं तुमको हरिनाम देने के लिए आया हूं। केवल वो अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर आज्ञाए जाओ करो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाओ करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कहते हैं कि हरिदास जाओ सबको भगवान का नाम दो, अरे वो कुछ नहीं देगा तो भी नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गो एंड गिव। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं यू कम टू मी, महाप्रभु कहते हैं यू डोंट कम टू मी आई विल कम टू यू। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनसे एक स्टेप और आगे है। वो कहते हैं यू रन इन द अपोजिट साइड, I will come behind you and I will catch you. चैतन्य महाप्रभु कहते तुम खड़े रहो मैं आ रहा हूं। लेकिन भाग जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु पीछे भागने वालों में से नहीं है। उदाहरण बताइए मुझे, ऐसा एक उदाहरण बताइए जिसमें चैतन्य महाप्रभु पीछे नहीं भागे, कौन था वो? एनीवे जगाई मधाई, जगाई मधाई जब उनके सामने आ गए चैतन्य महाप्रभु के, तो चैतन्य महाप्रभु साइड से पतली गली से खिसक लिए, he didn't want to, you know, लेकिन जगाई मदाई के पीछे नित्यानंद प्रभु दौड़े। हाँ, इसलिए हरिदास ठाकुर आके कंप्लेन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु बोला ये कैसे पागल के साथ में भेज दिया मेरे को प्रचार करने के लिए, ये क्या करता है समझ में नहीं आता है। और फिर अद्वैत आचार्य हंसने लगे, बोले कि एक बेवड़ा दूसरे बेवड़े के पीछे ही तो भागेगा। उन्होंने कहा कि एक जो पिया हुआ व्यक्ति है, जो पियक्कड़ है, जो नशे में है, वही तो दूसरे नशेड़ी के पीछे जाएगा। तो वो कहना चाहते थे कि ये जो नित्यानंद है ये भगवान के नशे में चूर है, और वो जगाई मदई जो है वो मद्यपान के नशे में चूर है, तो एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी के पीछे जा सकता है, ऐसे ही संग करेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम भागो, मैं पीछे पीछे भाग के आऊंगा और तुमको पकड़ूंगा और हरिनाम दे दूंगा। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाराज, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ये एक ही रूप है, लेकिन कहते हैं कि लीला करने के लिए भगवान जो है इस प्रकार से रूप धारण करते हैं। तो तहार द्वितीय रूप श्री बलराम, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, सब अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। बलराम और कृष्ण भी सेम है, कोई अंतर नहीं है, इवन राम और कृष्ण सेम है, लेकिन भगवान जब अलग अलग भाव लेके प्रकट होते ना, श्री राधार भावे वे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अलग अलग रूप में भगवान प्रकट होते हैं। जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ भगवान का महाभाव है, महाभाव का रूप है, अष्टविकार भाव का रूप भगवान ने प्रकट किया, वो भी श्रवण की वजह से। जगन्नाथ जगन्नाथ कैसे बने? श्रवण की वजह से बने। अरे अपनी कथा सुन के भगवान जगन्नाथ जी, कृष्ण जो है वो जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित हो गए। तो हमने शुरुआत वहीं से की थी कि श्रवण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में श्रवण को प्रथम स्थान देना चाहिए। कभी भी कहीं भी सुनने के लिए मिलता है तो तुरंत सुनना चाहिए हमको। ऐसे बताते हैं कि 10 काम छोड़ के क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, नहाना चाहिए, 100 काम छोड़ के भोजन ग्रहण करना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के भगवान की भक्ति का श्रवण करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 10 काम छोड़ के क्या करो, अगर आप नहाए नहीं हो तो बाकी के काम बचे छोड़ दो, पहले नहा लो। और खाना नहीं खाया, भोजन नहीं खाया है, तो अगर नहाए भी नहीं और भूख लगी है और ऐसा कुछ सिचुएशन है तो खा लो, वो बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भगवान की कहीं कथा सुनने को मिल जाए। इसलिए हनुमान जी देखो, श्री हनुमान जी कहीं पे भी राम कथा होती है वहीं पे पहुंच जाते हैं। राम कृष्ण दो एक है अंतर नाही निमेष, इनके नयन गंभीर है इनके चपल विशेष। सो चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे भागते हैं, बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल नित्यानंद, श्रद्धा मात्र ले देना परमानंद। वो कहते हैं कि तुम्ही किन्बे कृष्ण नाम, तुम्ही किन्बे कृष्ण नाम, दस्तूरी लोई बो आमी पूर्ण हबे काम, जदि नाम किन्बे भाई, जदि नाम किन्बे भाई, आमार संगे चालो महाजनेर काछे जाए, कि चलो मेरे साथ में। वो वहां पे नाम हट लगा के खड़ा है, भगवान का नाम फ्री में बांट रहा है, चलो मेरे साथ में। हाँ, दस्तूरी लोई भी आमी पूर्ण हो भी काम, मुझे भी कमीशन मिलेगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। भक्ति जो है उसमें आनंद ही आनंद है, और आनंद आना चाहिए भक्ति में। अगर भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो एनीवे, मैं कहां से कहां चला गया पता नहीं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु पे आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण, अच्छा वैकुंठ से बात हमारी चल रही थी कि इतना आसान नहीं है वैकुंठ में प्रवेश करना, लेकिन फिर 3 बर्थ इनको मिले, फिर ये यहाँ पर आया। तो सबसे पहला क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु जो था वो बड़ा था, हिरण्याक्ष जो था वो छोटा था, और वो अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा वर्णन आता है भागवत में, कि अपनी गदा को लेके घूम रहा था और हर किसी को ललकार रहा था कि मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो। तो जो डीमन होते हैं ना, उनका एक नेचर होता है, वो लड़ने झगड़ने में माहिर होते हैं एक्चुअली, यू नो, बस बिना मतलब के वो झगड़ा झगड़ी करना उनका काम होता है। तो वो जाके हर किसी को चैलेंज करने लगा कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, इंद्र को जाके परास्त कर दिया, फिर ढूंढने लगा और किसी को करूं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो कहां पहुंच गया, वो वरुण देव के पास पहुंच गया और वरुण देव को चैलेंज चुनौती देने लगा, कहने लगा कि हे वरुण देव मुझे तुमसे युद्ध करना है, चलो आ जाओ। तो वरुण देव ने सोचा कि इस मूर्ख से कौन युद्ध करेगा और कौन अपना टाइम पास करेगा। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जो बहुत बड़े भक्त होते हैं ना, वो ऐसे सब चीजों के अंदर ना अपना टाइम पास नहीं करते। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी के सामने वो दिग्विजय पंडित आया और कहा कि मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करना है। रूप गोस्वामी ने सोचा क्या टाइम है यार मेरे पास इससे इतना फालतू बात करने के लिए, भक्ति करो ना, समय बहुत कम है। देखो लोमश ऋषि, आपने नाम सुना है लोमश ऋषि का किसी ने? लोमश ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे और लोमश ऋषि कौन है पता है? उनको एक वरदान प्राप्त हुआ था। किसी को ज्ञात है क्या वरदान प्राप्त था लोमश ऋषि को? प्लीज बताइए मुझे इफ एनीबडी नोस।
So that you know his lifetime will be that number of hair drops something. Not sure probably.
And one hair will fall down. Yeah.
The blessing was that his one hair will fall in one day of Brahma.
Brahma.
And he had so many hairs on his body. Matlab, he will live I think almost eternally. And when he was doing tapasya, his disciple Indra was trying to make a hut for him because उसने ऐसा सोचा कि इनको धूप लग रही है तो अपने गुरु महाराज के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि गुरु महाराज का सबसे बड़ा अहित उनके चेले ही करते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि गुरु का सबसे बड़ा अहित उनके चेले लोग ही करते हैं, उनको शांति से रहने नहीं देते, बड़ा कष्ट देते हैं एक्चुअली। तो गुरु को जो कष्ट होता है मेनली उसके चेलों की वजह से ही होता है। ओके, तो वो डिस्टर्ब कर रहा था और हट बना रहा था, एक झोपड़ी कुटिया बना रहा था, ठाक 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 उधर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। तो फिर लोमश ऋषि को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को कहा कि हट जाए यहां से, आई डोंट वांट यू टू मेक ए हट फॉर मी, हट जाए इधर से। ऐसे हमारे सुदामा प्रभु कहते हैं कि हट, हटा दिया उसने। और फिर इंद्र को कहा कि देख इंद्र, द लाइफ इज सो शॉर्ट, व्हाई आर वेस्टिंग टाइम इन कंस्ट्रक्टिंग द हट, जस्ट चैंट द नेम ऑफ हरि। ऐसा वो कहने लगे। तो हरि का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं क्या तुम्हारे साथ में वाद विवाद करूं, छोड़ो क्या करना है। तो बोला नहीं तो ये पेपर साइन करो, ये मेरा विजय पत्र घोषणा पत्र है। और रूप गोस्वामी साइन कर दिया कि मैं हार गया तुमसे, जाओ। और ये बात फिर जीव गोस्वामी को पता चली। फिर जीव गोस्वामी ने ऑब्वियसली, वो एक अलग कथा है आप सबको पता है वो। तो भक्त जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करता एक्चुअली। तो वरुण देव ने कहा यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, तेरे को अगर फाइट करनी है तो एक ही आदमी है विष्णु, अभी वराह के रूप में वो प्रकट हुए हैं धरती को निकालने के लिए, जा उसके साथ में युद्ध कर। और तब हिरण्याक्ष ने सोचा कि हाँ ही समथिंग यू नो, और वरुण देव उसको बोलते हैं कि दैट इज द पर्सन ऑफ योर मैच। समझो एक वो खली है इतना बड़ा यू नो ग्रेट खली, वो किसी छोटे बौने आदमी की लिलीपुट के साथ में अगर वो युद्ध करेगा तो उसका क्या फायदा होगा, मजा भी नहीं आएगा ना उसके लिए, वैसे टक्कर का आदमी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि फिल्मों में भी जब वो विलन को दिखाते हैं तो हट्टा कट्टा एकदम यू नो बरोबर से, तो उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि जा तुम जाके उसके साथ में युद्ध करो। तो हिरण्याक्ष जो है वो ललकारता हुआ, वो सर्वशक्तिमान भरा भगवान वराह को ढूंढता हुआ और उस समुद्र में उसने प्रवेश किया। और जब उसको जाके देखा उन्होंने तो असुर हंस पड़ा क्योंकि उसने सोचा था विष्णु, मतलब उन्होंने मुकुट लगा के रखा होगा बहुत अच्छा सा, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ रहेगा ऐसा करके ना, ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। बट वेन ही सॉ हिज अपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ ए बोर, इन द फॉर्म ऑफ वराह, इन द फॉर्म ऑफ शुकर, केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे, सो वो हंसने लगा। उसने कहा तुम कैसे उभयचर प्राणी हो, उभयचर मतलब होता है कि जो धरती पे भी रह सकता है पानी में भी रह सकता है, ऐसा मेंढक सुअर धरती और पानी दोनों में रह सकता है। बोला कैसा उभयचर प्राणी है तुम, तो एकदम पशु हो, तुमसे क्या मैं करूंगा और मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं ये जो गदा है ना अभी घुमा के ऐसा फेंकूंगा तुम्हारे सर पे, क्योंकि देखो क्या होता है कि कई बार जो आसुरिक व्यक्ति जो होते हैं ना वो लोग कभी कभी छोटे प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है एक छोटा सा पत्थर आदमी लड़का उठाता है, और जैसे अभी इवन वृंदावन के अंदर आपको एक कथा का स्मरण कराता हूं कि एक छोटा सा जैकल, क्या बोलते हैं उसको, लोमड़ी, वो लोमड़ी जो थी उसको बच्चों ने एक खड्डा खोद के अंदर डाल के आग लगा दिया था। और तब जाके उस लोमड़ी की पुकार सुन के राधा रानी उन्होंने ललिता को भेजा, बोला लेके आ। तो बस खेल खेल में बच्चों ने ऐसा कर दिया। तो कई वो कुत्ते को उठा के पत्थर मारते हैं, तो उसने बोला मैं ऐसा गदा फेंकूंगा तुम्हारे सर पे लगेगा, सर फूट जाएगा तुम्हारा। इस तरह से, और बोले कि जैसे ही मैं तुमको मारूंगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा बिकॉज तुम जड़ हो सबकी। तो उस भयानक दांत वाले यू नो असुर, उन्होंने भगवान का पीछा किया और बोला अरे तुम किधर भाग रहे हो। पर भगवान ने ध्यान नहीं दिया, भगवान क्या कर रहे थे, पहले धरती को अपने ऑर्बिट में रखने के लिए जा रहे थे। तो भगवान ने सोचा इससे बाद में मैं निपटूंगा, पहले धरती को जो है उसको रख दूं। तो असुर बोलने लगा कि ए किधर डर के भाग रहा है, ए डरपोक लड़ाई कर मेरे से, युद्ध कर युद्ध कर। हाँ, तो भगवान को बहुत उल्टा पुल्टा कह रहा था। और इसलिए ये वर्ष जो अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कहते हैं कि भगवान को क्रोध आया। हाँ, क्योंकि भगवान को बहुत उल्टा सीधा उसने कहा। तो भगवान ने पहले क्या किया, पहले पृथ्वी को रखा, उसने कहा फिर मैं तेरे को देखता हूं। और फिर और उसने गदा लेके भगवान का पीछा कर रहा था, तो पहले क्या हुआ कि भगवान ने उसके दुर्वचन को सहन किया, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली कंडेमिंग द लॉर्ड, ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द लॉर्ड। तो यहां से पता चलता है कि भगवान एक पर्सन है, उनको भी खराब लगता है। कोई भगवान को जाके गाली देगा तो भगवान को भी खराब लगता है। हालांकि भगवान सहन करते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान से कई जन्मों से विमुख है, और भगवान कहते हैं कि प्लीज टर्न अराउंड। हाँ, लेकिन हम लोग उसको नहीं देखते, हम लोग अपना दूर दूर जाते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं हमारे पास आए। तो उनमें भी एक इमोशंस है। हाँ, तो वो भगवान को खराब तो लगा, लेकिन उन्होंने अपना क्रोध उस समय व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर वो आगे गए। और बाद में क्या हुआ, और भगवान भी हंस के कहने लगे कि हाँ हम जंगल के प्राणी हैं, और तुम्हारे जैसे शिकारी कुत्तों को मारने के लिए यू नो हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो कभी कभी ये जो शुक्र होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो शिकारी कुत्तों को भी मार देता है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि तुम जन्म मृत्यु के बंधन से बंधे हुए हो, मैं तुमको मुक्त करता हूं, मैं तुमको मार के तुम्हारा खात्मा कर देता हूं, और तुमने सारी शर्म खो दी है, इसके लिए मैं तुमको जो है वो अभी मार दूंगा। तो ऐसे इन दोनों के एक दूसरे के बीच में यू नो बात होने लगा। और फिर उन्होंने कहा कि तुम अपनी बकवास बंद करो, हाँ, और तुम खाली बात मत करो, युद्ध करो युद्ध करो। तो वो ललकार रहा था बार बार भगवान को। और मैत्री जी कहते हैं कि जब भगवान ने उस राक्षस को मतलब वापस पलट के जब जवाब दिया और राक्षस ललकार रहा था, तो वो राक्षस जो है वो बहुत मतलब ऐसा बताते हैं कि वो तिलमिला गया, जैसे ऐसे बताते हैं कि सांप की पूंछ पे कोई पैर लगा दे तो कैसे सांप तिलमिला जाता है, तो वैसे असुर तिलमिला गया। और बहुत गुस्से से, क्रोध के कारण कांपता हुआ, फुफकारता हुआ, और एकदम क्रोध से भगवान के ऊपर झपट पड़ा और भगवान पे टूट पड़ा, और दे धमाक से भगवान के ऊपर उसने गदा का प्रहार किया। बहुत जोरदार शक्तिशाली रूप से भगवान का प्रहार किया, लेकिन क्योंकि भगवान भी भगवान है, उन्होंने अपने आप को बचा लिया, एक साइड हो गए भगवान। और जैसे ही उसने गदा से मारा तो भगवान एकदम साइड में हो गए और उसका प्रहार जो है वो खाली चला गया। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते भी क्या है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक योगी मृत्यु को चकमा दे देता है, वैसे भगवान ने उस हिरण्याक्ष को चकमा दे दिया। और चकमा देने पे आज का ये वर्ष है, पूर्ण गदाम स्वामादाय भ्रामयंतम अभिक्षणशः अभ्यव्यत क्रुद्ध हरि क्रुद्ध। तो उन्होंने कहा कि तब भगवान ने क्या किया, अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए उस राक्षस के ऊपर झपटे। पहले तो बहुत उसने गदा मारने का प्रयास किया भगवान को, तो जो क्रोध से अपने होठ चबा रहा था, आज का जो वर्ष है उसमें क्या कहते हैं कि भगवान ने उस राक्षस की ओर रुख किया, उसके ऊपर झपटे जो अपने होठ को चबा रहा था, और उसने फिर गदा उठाई और बारंबार घुमाने लगा और भगवान को मारने लगा। तो इस वर्ष पे हम लोग आज है 16वें वर्ष पे, और बताते हैं कि तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया। लेकिन हिरण्याक्ष कौन था, ही वॉज वन अमंग जय एंड विजय, वो भी ऑर्डिनरी नहीं था। तो अपने युद्ध कौशल का वो प्रदर्शन कर रहा था, तो जैसे भगवान ने उस पर प्रहार किया तो उसने क्या किया, उसने भी अपने आप को बचा लिया। तो भगवान जो है ये शिविलरी, ये जो वीर रस का आस्वादन, ऐसे टुच्चे पुच्चे टॉम डिक एंड हैरी के साथ नहीं करते, उनके साथ भी टक्कर का आदमी चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि वैसा टक्कर का आदमी मिलेगा तो ही युद्ध करने में मजा आएगा, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। तो वो भी उसने जो था वो असुर युद्ध में बहुत कुशल था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैत्री मुनि कहते हैं कि बहुत कुशल था वो, और उस कुशलता में उसने अपने आप को बचा लिया। फिर क्या हुआ, फिर इस प्रकार हिरण्याक्ष और भगवान हरि एक दूसरे के ऊपर यू नो टूट पड़े, जीतने की इच्छा करके एक दूसरे से विशाल गदाओं से एक दूसरे पे आक्रमण करने लगे, और दे ढिशुम दे ढिशुम दे ढिशुम दे ढिशुम, एक दूसरे के ऊपर गदा से गदा टकरा रही है, और गदा टकरा के इतनी आवाज आ रही है, और दोनों हो रहा था। और ये जो लास्ट वर्ष हमने पढ़ा जिसमें ऐसा लगा कि दोनों योद्धाओं के अंदर एकदम स्पर्धा थी, कॉम्पिटिशन, कॉम्बेटेंट, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि एक दूसरे के शरीर पर नुकीली गदाओं से प्रहार किया, तो उससे क्या हुआ, रक्त बहने लगा, रक्त के फवारे उड़ने लगे, और वो रक्त की गंध जो थी वो एक दूसरे को मिल रही थी।
क्योंकि भगवान भी वराह के रूप में थे, वो भी उनका नाक बड़ा तेज था, और असुर भी जो असुर था उनको तो ब्लड अच्छा लगता, एक दूसरे के खून के प्यासे, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, एक दूसरे के खून के प्यासे बन के एक दूसरे के ऊपर टकराव के प्रहार कर रहे हैं, और एक तरह से एक दूसरे पे चार्ज चल रहे थे, और मुठभेड़ में एक दूसरे को मार रहे थे, दे धनादन दे धनादन दे धनादन, और ऐसे लग रहा था कि दो बलवान सांड जो है वो टकरा के एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और इतना भयानक युद्ध हो रहा था दोनों के अंदर में। तो वराह भगवान जो है वो इस युद्ध को देखने के लिए क्या हुआ कि संसार भर के जितने भी प्राणी थे उस समय, हाँ, देवता लोग ऊपर से प्रकट होकर देखने लगे कि क्या स्पर्धा हो रही है, चलो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, और वो दोनों देखने लगे, और भगवान उस प्रकार उससे युद्ध कर रहे थे कि जैसे कई बार ऐसे बताते कि भगवान उसको छोड़ रहे थे, फिर पकड़ रहे थे, फिर छोड़ रहे थे, तो गरुड़ जैसे सांप को खाने के पहले करता है वैसे कर रहे थे। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी को थोड़ा डर लगा, उन्होंने कहा, कह रहे ये जो असुर लोग होते हैं इनकी शक्तियां रात में बढ़ जाती है, तो भगवान आप जो है वो प्राकट तो हो गए, लड़ाई तो कर रहे, इतने टाइम से लड़ाई कर रहे हो आप, लेकिन लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे संध्या काल होगा इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो आप इसको मार दो। हालांकि ब्रह्मा जी ये जानते नहीं थे कि शक्तियों के स्वामी तो कौन है, वो तो भगवान है, वो उन्हीं से आता है। तो भगवान भी उसके साथ में मजा कर रहे थे, क्योंकि भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे अपने वीर रस का आस्वादन करने के लिए। तो वही भगवान जो है कभी कभी वीर रस का आस्वादन करते हैं, वही भगवान कभी कभी माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं, कभी कभी वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। तो वात्सल्य रस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये वराहदेव, इसका शरीर इतना बड़ा था, ऐसे बताते हैं कि उनके एक रूम कोप में पूरा का पूरा समुन्द्र जो है वो समाहित हो जाता था। लेकिन वही वराहदेव जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, बाल कृष्ण के रूप में, तो माता यशोदा एक बाल्टी पानी लेके कृष्ण के सर पर डालती थी और कृष्ण का स्नान हो जाता था। सोचो ये कृष्ण जो है कैसी कैसी लीला करते हैं। और कृष्ण एक बार क्या है कि माता यशोदा बाल्टी से पानी से उसको नहलाया, नहला के कृष्ण बाहर निकले, फिर कृष्ण ने बोला कि यार ब्रज जो है, ब्रज मेरे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, और ब्रज की रज जो है उससे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। ब्रज की रज में धूर बनू मैं, तो भगवान ने क्या किया, लेटना शुरू किया ब्रज में, और माता यशोदा ने देखा कि अरे अभी इसको नहला के बाहर निकाला, ये तो धरती के अंदर वापस से लेटने लगा, अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए, तो मैया ने झाड़ दिया कपड़े सब। तो कृष्ण ने सोचा कि अरे इसने माटी झाड़ दी, ब्रज की मिट्टी झाड़ दी, ऐसे क्या कर दिया। तो उसने सोचा कि यार मैं सूखी मिट्टी में अगर लौटता हूं तो मैया झाड़ देती है, तो मैं गीली मिट्टी में लौटूंगा। तो भगवान ने क्या किया कि गीली मिट्टी के अंदर, जिसके अंदर गोमूत्र है, ब्रज की पानी रज सब मिलके गोबर, उसके अंदर भगवान लौटने लगे, और बोले कि गीला कपड़े पे जब ये कीचड़ लग जाएगा तो मैया यशोदा कैसे झाड़ेगी उसको। तो जब ये मैया यशोदा बाहर आई, देखिए अरे ये तो कपड़ा पहना के इसको भी ला के बाहर खड़ा किया, ये तो वापस कीचड़ में चला गया। तो मैया को बड़ा गुस्सा आया, और मैया ने कहा कि क्या रे काना, क्या रे लाला, हाँ तू क्या सुअर है जो ऐसे कीचड़ में लेट रहा है। बोलो मैया ने क्या कहा, क्या तू सुअर है क्या, कैसे। कभी कभी माँ लोग को गुस्सा आ जाता है ना कि बच्चा इतना परेशान करता है, तो बोला क्या तू सुअर है क्या, कीचड़ में लौट रहा है। और लाला ने हंस के जवाब दिया, कहा कि हाँ मैया, मैं एक पिछले जन्म में शुक्र के रूप में प्रकट हुआ था, तो थोड़े से उस जन्म के गुण मेरे में बाकी रह गए हैं, तो वो मैं पूरा कर रहा हूं अभी। सोचो भगवान की क्या लीला है। तो वह वराहदेव जिसके रोमकूप में समुद्र समाहित हो जाता है, वह वराहदेव एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट होते हैं वापिस से। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण रयत एक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर रूप जहा रस रूप। भगवान अलग 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 रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कभी मछली के रूप में प्रकट होते हैं तो मत्स्य अवतार कहलाते हैं, कभी वराह के रूप में प्रकट होते हैं तो शुक्र वराह अवतार कहलाते हैं, कभी वामन के रूप में प्रकट होते हैं, कभी कुर्म के रूप में, कछुए के रूप में प्रकट होते हैं, कभी आधे नर आधे सिंह नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, कभी भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं, और कभी भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं, तो उसे कहते हैं श्रीमद भागवतम। और हम श्रीमद भागवतम का ये ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मारो इसको, इस असुर को मार दो भगवान, मार दो। तो मारने के लिए कहते हैं, और तब भगवान क्या करते हैं, अपने हाथ से एक प्रहार करते हैं उसकी गाल के नीचे, बोलते हैं ना कनपट्टी के नीचे बजाते हैं, अगर बम्बैया भाषा में बोले तो भगवान कनपट्टी के नीचे उसके एक ऐसा बजाते हैं कि खून की उल्टी करता हुआ असुर जो है, हाँ, वो पूरा की पूरी हड्डियां चूर चूर हो जाती है और उसका नाश हो जाता है, और वह असुर जो है वो अपनी सदगति को प्राप्त हो जाता है। बता बोलिए वराह देव भगवान की जय। तो इस प्रकार से वराह देव जो है पट्टी पे प्रहार करके असुर का खात्मा कर देते हैं। तो वो आगे आएगा, आप आगे इस श्लोक को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो श्लोक जहां पे भगवान कह रहे, ये जब बात हो रही है आज के श्लोक में कि एक दूसरे पे गदा का प्रहार हो रहा है और एक दूसरे से गदा टकरा के और एक दूसरे के साथ वो ऐसा भयंकर युद्ध कर रहे हैं कि बड़ा ही मतलब आनंद लेके लोग देख रहे हैं इसमें। सारे के सारे जन लोग, महर लोग, तप लोग, सत्य लोग, सारे प्राणी जो है वो जमा हो गए हैं और सब लोग आके जो है वो भगवान का युद्ध देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो भगवान चाहे युद्ध करे चाहे भगवान प्रेम करे, दोनों में अंतर नहीं है कुछ। दोनों लीला जो है उसमें हमको रस का आस्वादन करना चाहिए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान की रास लीला जो है उसमें बड़ा मजा आता है। तो कई बार जो होता है वो बाहर के जो लोग हैं जिनको भागवत का सच्चा ज्ञान नहीं है और जिन्होंने कैंटो बाय कैंटो, पेज बाय पेज बिकमिंग ए सेज वो फिलोसॉफी समझी नहीं है, वो सीधा दसवें स्कंद पे जंप मारते, तीसरे स्कंद पे आते ही नहीं है। लेकिन पहले तीसरे स्कंद, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद ऐसे पढ़ते हुए हमको दसम स्कंद की ओर जाना चाहिए और भगवान की हर लीला का आस्वादन करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो एब्सोल्यूट है और वह जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। इसलिए हर लीला का आनंद हमको लेना आना चाहिए और लीला का आनंद लेंगे तो हम भगवान के धाम में पहुंच पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्री वराहदेव भगवान की जय।
श्री
प्रभुपाद
प्रभु की जय। इट वाज रियल पावर पैक परफॉर्मेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। नाउ आई वांट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू प्रभु, आपसे विनती है, वन सिनेमा जब आए हुए तो बहुत अच्छा होगा प्लीज। अभी आपको क्राउड नहीं छोड़ेगा, प्लीज कोशिश कीजिए प्रभु, ये वन सिने मंथ एक बार।
प्रभु जी मुझे बहुत
हम जैसे तो प्रभु जी जरूर आइएगा, क्योंकि हम तो सुनते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं मुझे समझ नहीं आती, पर आत्मा क्या समझते मुझे नहीं पता। पर आज का आनंद की जय, बहुत आनंद आया प्रभु जी।
माता जी प्रभु
सारी लीलाओं में घूमे के सारी रात, बहुत आनंद आया।
प्रभु बहुत बिजी है, उनका इतने क्लास होते
हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बिजी बिजी नहीं हूँ, मुझे बहुत समय के बाद में सेवा का थोड़ा मौका मिला है। रामेश्वर कनई प्रभु शायद मुझे भूल गए थे तो कल उन्होंने कहा
उन्होंने बोला आप सब समय बिजी होते इसलिए पकड़ना मुश्किल है, तो आप वन सिनेमा
आने का तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, क्या बिजी प्रभु, कोई इतना कोई बिजी नहीं हूँ।
कितना हम्बल हो
प्रभु। पर मैं ऐसा है कि मेरे को कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है प्रभु जी, तो एक लेक्चर आता था मैंने बता दिया आपको, अभी नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे तो चुपचाप बैठूंगा मैं, क्या करूंगा। नहीं 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 हम्बल नहीं प्रभु, एक मैंने पहले क्लास कभी दिया था मुझे याद था, मैंने बोल दिया।
आज दिल्ली वाले कुछ बन बिहारी माता जी, यू एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड बन बिहारी माता जी फ्रॉम कनाडा।
वेरी वंडरफुल क्लास प्रभु, वेरी नाइस,
फैंटास्टिक
द पिक्चराइजेशन एंड परफेक्ट नो डायरेक्शन एंड पिक्चराइजेशन इज लाइक परफेक्ट बॉलीवुड मूवी ओनली, सो प्रेजेंटेड इन अ वेरी नाइस स्टाइल दैट इज द सिग्नेचर मार्क यू नो प्रेजेंटेशन वी नो visualization for all of us and very nice, very inspiring.
He's a very successful chartered accountant also in his material life also. He's a very great chartered accountant. हमारे बहुत प्रिय है प्रभु, आप वन सिनेमा आइए प्रभु प्लीज हमारे लिए प्लीज, एक विनती है मैंने में एक बार मैं
जैसा आदेश करेंगे मैं प्रस्तुत हो
जाऊंगा। वंस इन अ वीक बोल रहे
सिंह प्रभु जी इज वन ऑफ द मेंटर फॉर आवर वन ऑफ रिलेटिव्स आल्सो, हमारे एक रिश्तेदार के आप मेंटर भी हैं।
ओ एक है तो अजीत
का, मैं तो किसी का मेंटर नहीं हूं माता जी, लेकिन आई थिंक बन बिहारी माता जी से शायद मैं पहली बार ही बात कर रहा हूँ, कभी शायद मुझे
हम लोग मिले थे प्रभु, लेकिन हम लोग ग्रुप में थे ना, हम लोग प्रसन्ना डेंटल के सेवा के ग्रुप में थे ना प्रभु।
माता जी थे डॉक्टर, सी थे डॉक्टर,
हाँ ओके,
फ्रॉम मुंबई सी केम, सी बिकेम अ डिवोटी फ्रॉम मुंबई अलोंग विद द डॉक्टर्स।
आप आपके मतलब आपके प्रचार के रास्ते ही से मतलब हमारे दूर के रिलेटिव है इतना ठीक से नहीं, लेकिन आपकी जो डॉटर है उनकी वो फ्रेंड है वो सिडनी में रहते हैं, गौरांगी है ना, गौरांगी वो उसकी।
हाँ समझ गया समझ गया, अब आप गौरव और प्रियंका की बात कर रहे हैं। वो तो खैर यहाँ पे थे दुबई में हमारे साथ में, फिर वो कतार चले गए, फिर अभी सिडनी चले गए।
बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, फैंटास्टिक किया,
वेरी नाइस प्रभु, आप और
गजब कर लिया,
बहुत बढ़िया, आपने हिंदी भाषा में बहुत अच्छा दिया प्रभु, सबको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
हर कोई इंग्लिश में ही बोलता है माता जी, इतना तो मैंने कहा चलो
पूरा
माल मिलता है सब कुछ।
Yeah, it was good. Very nice project. Thank you so much. Hare Krishna.
Anita Mataji, any question? Anita Mataji and Tulsi Mataji. Kiran Jambekar, my classmate with Chartered Accountant, and they are all become devotees in like 6 months. Chola Mara mein aa gaya. V.S. Narayanan Prabhu, one from Mumbai.
Oh, very nice.
Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhuji, bahut fantastic class tha. In fact, aap agar bolte hain ki you will repeat this class, we will again listen to this class. It is so nice.
Okay. Record milega aapko. Prabhu actually retired from Bank of India. Indian Bank, no?
Oh, I see.
Indian Bank.
Just, I'm also a banker only, Prabhuji. I started my career with Exim
Bank. Oh.
Export import Bank of India. Then...
Kiran Jambekar has left or gone or what? Kiran Jambekar?
Oh, Hare Krishna, Hare Krishna. No, I'm here.
I'm from Mumbai, Chamanas.
Very, very beautiful. Yeah. Beautiful lecture. Thank you so much. It's always...
Thank you for the blessings. Maybe you can... Yes, Roji, sir.
बहुत ही मजा आता है, और स्पेशली हिंदी हिंदी में आप जैसे बात करते हैं बहुत ही ये आता है मुझे तो, वैसे दोनों ही लैंग्वेजेस ठीक है लेकिन हिंदी में बहुत ही कम सुनने को मिलता है, आपकी आपकी आवाज, आपकी जिस तरीके से आप कहते हैं सुनाते हैं कहानियां और श्लोक जो आप पढ़ते हैं वो सुन के बहुत ही बढ़िया लगता है एकदम।
रामेश प्रभु आगे किरण जामनगर, वी स्टडीड टुगेदर फॉर 40 इयर्स।
यस
प्रभु, आई रिक्वेस्ट
Chartered Accountants, we both studied together so many years.
We studied back together for 40 years, me and so Kiran and Naran.
Used to keep coaching. Our Sugagar Prabhu used to coach me so many times. But
he's my coach also, okay. Prabhuji.
No, bro.
He's a great friend, but he has not changed even a bit in the last 50 years, I'll say. Our association has been that long, but... He is actually gone a lot of spiritual. That time also he was, but I think after some time when he went to Middle East, after that he went into this particular spiritual liye more. Main to ta aise piche reh gaya. And I recently
Sukhkar Prabhu is also my mentor and guide. You know, I was very fortunate to get
Prabhu aise joke kar rahe. Prabhu, you have to just guide Kiran Prabhu in Mumbai. He want to just get connected because either a line mil raha hai, so you can just guide him, Prabhu.
Yeah, no problem. Prabhu ji, aap mere ko number de dijiye. I will connect him to devotees wherever he is staying. Bombay mein jahan pe Prabhu ji rehte hain, uske aas pass mein.
He's in Powai mein. Powai.
Yes, I live in Powai.
Bahut bhar ke association hai Prabhu ji Powai mein.
Yeah, okay.
Thank you so much. IIT ke aas pass kitne sare log Powai mein rehte hain Prabhu ji. So many. I will connect you, Prabhuji.
And Shugokar Prabhu, today our one very good friend of ours in our building, his he and his wife, they have also joined today in this session. The devotees.
What is their name?
Sonal Mataji.
So, Sonal Mataji, swagat ho. I saw the name. I saw. Sonal Mataji, swagat ho. एंड फ्रॉम मुंबई तो इनकी किन के डिसेबल है
सुनील जी
नो आई थिंक इनिशिएटेड नहीं है पर अभी आई थिंक वो लोग चले गए प्रभु yes. मतलब अभी जस्ट आई थिंक दे
नॉट इनिशिएटेड शी माइट हैव जस्ट लेफ्ट शी वाज देयर अ लिटिल व्हाइल बैक प्रोबब्ली शी हैज जस्ट लेफ्ट
ओहो एनीवे थैंक यू वेरी मच प्रभु Ramesh Babu, you have to give the vote of thanks for Prabhu.
Prabhu, actually,
no, Prabhu, you can please correct me, Rameshwar Prabhu and Sukkar Prabhu and other devotees. If I would have made any mistake, I ask for
Prabhu,
forgiveness.
You made a big mistake, Prabhu. You made a big mistake. From October, two mistakes you made. One is from October 16, you did not give time. This is the sorry, how many months? This is first mistake. Second mistake, I requested you to give a Bhagavatam class. But you gave audio, video, visuals and a drama all together. There was no class only. It was a complete drama, Prabhu. We can see how this this great demon and they were, how they raised their hand, head to skip one another.
Visually.
Nobody can give such a class, Prabhu. It's not a class only. It is a audio, video, visuals. We can...
Everything,
yeah. Your Guru Maharaj, you know, your Guru Maharaj, when he gives class, he gives 1,000 kinds of voice, sounds, you know, to give more effect to the class. You are simply following his footsteps.
You're getting his same footsteps.
That's a very... That's actually, obviously, you know... obviously, whatever I have heard from our you know, spiritual masters... mentors, devotees, I'm just doing. But as you rightly said, Ulla. That it was not a class. It was like a drama and I am actually a dramatic only, Prabhuji.
Yeah, no, Prabhu.
Easy drama, to reach everyone, no?
Sukhtar Prabhuji, I do drama only in chanting. So my chanting is also Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare drama, Hare, Hare drama, drama, drama. So please say that I can become Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.
And I'm very Prabhu. Happy for Saroj Mataji today. She would have enjoyed Hindi.
Enjoyed so much.
She's the most happy today.
Yeah, she's happy. Amesha, always she's hearing in English
class. Hindi,
Hindi today. Pakka pakka Hindi. Thank you.
Kabhi kabhi Ajit Prabhu translate karta hai. Kabhi kabhi.
Thank you, Prabhuji. Thank you so much.
Hello, thank you, Prabhuji. Thank you simply for your time and for tolerating me.
Amesha Prabhu. He has agreed to come once in a month. Unse abhi
thank you.
Lelia.
Thank you, bro.
Bhaiya, tumhari jay ho, bahut achcha kiya. Hamare liye to bahut achcha kiya, Rameshwar bhaiya ne. Prabhuji ko bulaye. Main to bahut khush hu, aaj to bahut.
Wo Mataji is a very good devotee in Delhi, Chai Babad. And Gokulanand, unko direct darshan diye, unke ghar mein aadha doodh pi lete hai, unka peanuts, wo jo cashew nuts sab kha lete hai. Directly he's giving association to Mataji. Prabhu passed away 3 years back and he went on the Nityananda Trayodashi today. So he has gone back home. Mataji also wanted to go back. She's 72 year old. So just give your wishes to Mataji. It's a wonderful Mataji. Saroj Mukhi Devi Das.
I pray that may Mataji cross Suvarna Jayanti. Meaning
Chai, 100 years.
Matlab golden. Basically golden to 50 hota hai. Wo to aapne cross kar liya hai. 100 ko kya bolte? Shatabdi. आप शताब्दी बनाए भगवान की सेवा में और दूसरे भक्तों को भी आप प्रोत्साहित करते रहें और भगवान की अच्छी आप सेवा कर रहे हैं और आपके बस आशीर्वाद से आई थिंक सबका भला हो जाएगा. आपको और कुछ
माता जी को मुरली वादन
गुरु महाराज की कृपा है जी. ये मेरे गुरु महाराज की मेरे पर असीम कृपा है. हमें कुछ आते जाते नहीं है लेकिन कैसे होता है क्या होता है कब के पिछड़े हम लोग अब मिले हैं है ना. रमेश प्रभु जी सुखा प्रभु जी चाहे एक पल के लिए सभी लोग जी लिए ये
हम लोग उनके उनके घर गए प्रभु जी. आप भी दिल्ली जाके तो जाइए उनके घर पे.
वेरी
वंडरफुल. आई स्पेंड फ्यू आवर्स इन माता जी हाउस.
या
एब्सोल्युटली
नेक्स्ट टाइम आल्सो ब्लेस आवर हाउस प्रभु.
गोकुलानंद का घर है मेरा
तो ससुराल है. साईबाबाद में ससुराल है मेरा.
प्रभु आइएगा आप लोग हम लोगों के घर पे.
आपने बोला मुरली वादन उनको सुनाया पड़ता है सरोज माता जी को किस समय मुरली वादन
आप सरोज माता जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अलार्म सुनना अच्छा लगे और अलार्म सुन के उठ जाऊं मैं
प्रभु जी वो पता नहीं कैसे भागवतम कराने से पहले भी मुझे मुरली का धुन सुनाई देता अभी भी ऐसा लगता है ऐसे लगता है राधा रानी की पायल बजती है ये मैं पागल हूँ मेंटल आदमी को ऐसे ऐसे चीजें आते हैं हमें दिमाग में
स्पिरिचुअल अलार्म अल्लाह एंड राम स्पिरिचुअल अलार्म
अलार्म
वो सुनाई देगा आपका ऐसा है जरूर सुनेंगे आप ऐसा नहीं है जो नहीं सुनेंगे
मुरली सुन
लेते मेरे लिए मुरली तो शायद पता नहीं कितना जन्म लगेगा भगवान जाने
मुरली माता जी को डायरेक्टली सुनते हैं गोकुलानंद तो उनके घर में पायल की झनकार राधा रानी का पायल का आवाज भी आ रहा है पायल का
पता नहीं क्यों आता है क्या आता है ये उसे पता गोकुलानंद को पता है या राधा रानी को पर आते हैं प्रभु जी झूठ नहीं बोलना चाहिए
फॉर लॉन्ग
I'm sorry, Prabhu.
I'm saying, you know, we are just holding you, I believe.
आपको लेट हो रहा है
नो प्रॉब्लम
नहीं मेरे को कुछ नहीं मेरे को लेट नहीं लेकिन
प्रभु ऑफिस में बहुत बिजी है प्रभु
ऑफिस में आई कैन सी बैकग्राउंड से पता चला ऑफिस में है नहीं तो वो कनाई बलाई रहते हैं बैकग्राउंड में वी विल नॉट ट्रबल हिम अ लॉट थैंक यू प्रभु जी थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन
थैंक यू प्रभु आपका संग चाहिए वैसे हमारा रंग बदलेगा आपका संग मिलेगा तो आपका संग चाहिए जरूर आपको बुलाएंगे प्रभु प्लीज आइए प्रभु आप बहुत प्यारे हो सब लोग का बहुत प्यारा हो गया अभी आपको कोई छोड़ेगा नहीं रसामृत में रसा है आपको रस है इसलिए अपना नाम रसामृत दास दिया आपका नाम
और अब आप हिंदी हिंदी में देंगे तो और अच्छा लगेगा
हाँ हिंदी में दीजिए प्रभु हिंदी में चाहिए वो आपको भी अच्छा लगा हम लोग का डिवोटी को देखकर आपको भी
हिंदी
में बात हम आपको बराबर सेवा किया ऐसा लगता है बराबर आपको रिसीव किया
बोलने का एक्शन बहुत अच्छा था प्रभु जी का और जिसे भी नहीं समझ में आया समझ जाए है ना हमारे किसी के लिए बहुत अच्छा मुझे तो बहुत आनंद आया बहुत आनंद आया
प्रभु आज आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर आज वीडियो रिकॉर्डिंग करना था प्रभु सबको अच्छा लगता था वीडियो रिकॉर्डिंग
कृपा हो गई मेरे ऊपर तभी इतना सुंदर सुंदर वाणी सुनने को मिला सारा रोग दर्शन हो गया
वीडियो रिकॉर्डिंग इज देयर प्रभु
ओ बट वी आर नॉट डूइंग दैट नो वी आर ओनली रनिंग ऑडियो नो
नो नो बोथ गोइंग ऑन नो
ओ तो इसका वीडियो दीजिए वीडियो सबको वीडियो दीजिए
प्रभु इट इज वेरी वेरी heavy it will be very heavy gbs oh. you cannot send any okay. okay thank you prabhu
okay prabhu ji thank you very much
mother is okay na prabhu
yeah, yeah she is fine
okay
mother prabhu just a second I am calling
please prabhu okay please
mother mat bole
I didn't get your darshan long time
aashirvaad chahiye
she is sitting here she was also listening
hare krishna
yeah.
अरे
कृष्ण माता जी
धन्यवाद
आशीर्वाद
चाहिए
माता जी कैसे हो
उसी रे कैसे हो
अच्छी हूँ मैं
हरे कृष्ण
माता जी हरे कृष्ण
हरे कृष्ण माता जी
आपका आशीर्वाद चाहिए माता जी मैं सुखकर कृष्ण दाद आपके घर में आए हूँ मैं अबू धाबी में
किरण जी वो विजय वो आयुष्मान वो एसएससी
हो थैंक यू माता जी थैंक यू बहुत धन्यवाद रमेश प्रभु आप भी जरा प्रणाम कर लीजिए माता जी
yes, माता जी yes, माता जी कई बार मैं भी उधर आया था माता जी कितना खिलाया ये प्रसाद इतना प्रेम से हरे कृष्णा
माता जी आपका चरण धूल हमें दीजिए चरण धूल आपका
ठीक है प्रभु जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू माता जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड you know, particularly for tolerating me.
No.
Enjoy it. His grace, Rasamit Prabhu ki.
Meri maiya ki jai, meri maa ka bhi jai bolo bhai, hai Krishna, maa ka dani ki jai, meri maa ki jai,
Gauranga, Nityananda,
Gauranga,
Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, Gauranga, G